आप हैं SBS हिंदी के साथ। आज के मुख्य समाचार में फेडरल सरकार ने अपने चुनाव अभियान की लागत की जारी, अगले 4 वर्षों में बचाएंगे $1 बिलियन। लेबर पार्टी गुरुवार को अपनी चुनावी लागत प्रकाशित करेगी। मारियोपोल में आज़ोवस्टाल स्टील वर्क्स से निकाले गए 260 से अधिक यूक्रेनी सैनिक। और खेल में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 17 रनों से हराया, जिस वजह से उनके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद है कायम। आज के बुलेटिन में गठबंधन ने यह संकेत दिया है कि वह अपने चुनावी वादों को पूरी तरह से पोषित कर सकता है और बजट की निम्न रेखा में भी कुल $104 बिलियन का सुधार कर रहा है। फेडरल सरकार का कहना है कि उन्होंने कॉस्टिंग के लिए 35 चुनावी नीतियां सामने रखी हैं और मंगलवार को 2 और नीतियां ट्रेजरी विश्लेषण के लिए प्रेषित की जाएंगी। फेडरल कोषाध्यक्ष जॉश फ्राइडनबर्ग ने कहा है कि लेबर नेता एंथनी एल्बनीसी ने पहले कभी ऑस्ट्रेलियाई जनता को कोई बजट नहीं दिया है और इसी वजह से उन्होंने एंथनी एल्बनीसी को कमजोर भी कहा।
He and the Labor Party have not put forward one policy for independent costing by Treasury and Finance, in clear contrast with the Coalition, who have put forward 35 policies for costing by Treasury and Finance.
फेडरल सरकार ने वादा किया है कि $2.3 बिलियन की चुनावी प्रतिबद्धताओं के भुगतान के लिए आवश्यक सेवाओं को कम नहीं किया जाएगा। फेडरल विपक्ष ने कहा है कि वह आगामी गुरुवार को चुनावी प्रतिबद्धता के तहत अपने फंडिंग खर्चे का हिसाब प्रकाशित करेंगे। उनका कहना है कि यह फेडरल सरकार को कॉस्ट ऑफ लिविंग के मुद्दे पर करारा जवाब होगा। लेबर दल एक मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग फंड का प्रस्ताव कर रहा है, जो टीके सहित मेडिकल सप्लाई चेन्स को समर्थन करने के लिए $15 बिलियन के पूर्वनिर्माण पैकेज का हिस्सा होंगे। विपक्ष कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है, जिसके कारण उपभोक्ताओं का विश्वास सरकार से कम होता जा रहा है।
Now the difference between our budget and the coalition budget will be really important investments in cleaner and cheaper energy and cheaper childcare and skills and opportunities for more Australians.
इस शनिवार 21 मई को होने वाले फेडरल चुनाव को सामने रखकर नेशनल इंडिजिनस टेलीविजन यानी NITV फर्स्ट नेशन समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समर्थन करने में सबसे आगे खड़ा है। आज रात 7:30 बजे NITV पर द पॉइंट के मेजबान नरेल्डा जेकब्स और जॉन पॉलजांग के स्वदेशी मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। वे लेबर के स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई प्रवक्ता लिंडा बर्नी और ग्रीन सेनेटर लिडिया थॉप द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग, जलवायु परिवर्तन, उलुरु स्टेटमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा और नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम NDIS जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शामिल होंगे। श्री जानके ने SBS न्यूज को बताया है कि आज रात चर्चा किए जाने वाले कई मुद्दों को चुनावी अभियान में अनदेखा किया गया है, इस वजह से मतदाताओं को चुनाव से पहले इन विषय पर संबोधित करने की आवश्यकता है।
Well, sadly, I think that many First Nations issues and the issues that First Nations communities want to have raised during the election campaign have been missed and they've not been discussed. So tonight's program really hopes to bring those issues to the forefront. We'll try and break down what the major parties are offering to our First Nations voters and maybe get an idea of what First Nations communities can expect not only over the next 3 years but over the next decade.
एक रेफ्यूजी अधिवक्ता के 6 शब्दों वाले ट्वीट पर रक्षा मंत्री पीटर डटन ने मानहानि का दावा किया था, जो वे जीत गए थे, लेकिन फेडरल कोर्ट में अपील पर इस जीत को रद्द किया गया है। रेफ्यूजी अधिवक्ता शेन बाजी ने सोशल मीडिया का उपयोग करके रक्षा मंत्री पीटर डटन को रेप अपोलोजिस्ट कहा था, जिसके कारण दिसंबर में एक न्यायाधीश ने उनको रक्षा मंत्री की लीगल फीस और मुआवजे के तौर पर $35,000 का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन फेडरल कोर्ट के कुल फुल कोर्ट ने श्रीबाजी की अपील के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रारंभिक आदेश को रद्द करते हुए कार्यवाही को खारिज कर दिया। श्रीबाजी की पोस्ट में 2019 के एक समाचार लेख का लिंक था जिसमें मिस्टर डटन के हवाले से कहा गया था कि नाउरू की जिन शरणार्थी महिलाओं ने बलात्कार की शिकायत की थी वे असल में ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कोशिश कर रही थी। इस पोस्ट को बाद में हटा दिया गया था। शरणार्थी अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें राहत मिली है कि यह मामला आखिरकार खत्म हो गया है।
This case was not just about me. It was about anyone who wants to make political comment or criticism on social media. I feel very grateful that the court has set such a clear and compelling precedent. Fighting this case has taken a tremendous toll on me. It has been very stressful for me and my family. So today I'm happy and incredibly relieved that justice has finally prevailed.
इस सप्ताह राष्ट्रीय सुरक्षा को गठबंधन की ओर से चुनावी मुद्दा बनाते हुए प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन ने चीनी सरकार को लेकर अपनी चिंताओं को दोहराया है। चीन और सोलोमन आइलैंड के बीच होने वाली एक सुरक्षा संधि के ड्राफ्ट के लीक होने और फिर अप्रैल में इस पर हस्ताक्षर होने के बाद लेबर ने फेडरल सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह अपनी पैसिफिक पॉलिसी में विफल हो रही है। अपने कैंपेन के दौरान श्री मॉरिसन ने कहा कि चीन और सोलोमन आइलैंड के बीच इस सौदे के बाद तनाव बढ़ने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया इन द्वीप देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभा रहा है।
I mean, we have a federal police in the Solomon Islands right now, and we've had defense forces there also back in December. We are their first call on security. That has always been the case. That has not changed. And to suggest otherwise, I think would be wrong.
ऑस्ट्रेलिया में आने वाले दशकों में मेलानोमा के मामलों में बढ़त देखी जा सकती है। इसके चलते मांग की जा रही है कि डॉक्टरों को इस खतरे के लिए तैयार किया जाए। नए शोध में सामने आया है कि वैश्विक स्तर पर मेलानोमा के मामलों में 50% की वृद्धि हो सकती है और अगले 20 सालों में इस बीमारी से होने वाली मृत्यु में 67% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फिलहाल विश्व की सबसे अधिक त्वचा कैंसर और मेलानोमा की दर ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक है। विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने राज्य की बिग बिल पहल के हिस्से के रूप में 300 अप्रेंटिसेस को 4.5 मिलियन की फंडिंग देने का घोषणा की है। विक्टोरिया बिग बिल कार्यक्रम राज्य भर में 165 सड़क और रेलवे परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है। श्री एंड्रूज का कहना है कि राज्य में श्रम बाजार की मुश्किल परिस्थितियों में यह योजना हजारों रोजगार पैदा करेगी। प्रीमियर का कहना है कि ये नई नौकरियां विक्टोरियाई लोगों को उनके करियर और कौशल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी।
So it's very important that we have targeted programs, whether it be through wage subsidies and also trying to make it as easy as possible dealing with costs. So adding these courses to the free TAFE list, providing that really important mentorship for a full 12 months or indeed longer than that even.
यूक्रेन की रक्षा मंत्री आना माल्यार ने पुष्टि की है कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में अज़ोवस्टाल स्टीलवर्क से 260 से अधिक योद्धा, जिनमें कुछ बुरी तरह से घायल भी हैं, उन्हें निकालकर रूस नियंत्रित क्षेत्रों में ले जाया गया है। 50 से अधिक घायल यूक्रेनी सैनिकों को अस्पताल ले जाया गया है। एक मानवीय गलियारे के माध्यम से ओलेनिवका से 211 से अधिक अन्य लोगों को भी निकाला गया है। इस बात की तत्काल पुष्टि नहीं हुई है कि घायलों को युद्ध में के बंदी माना जाएगा या नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बचाव दल को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी है।
Завдяки діям українських військових збройних сил України, розвідки
We hope that we will manage to save the life of our guys. There are heavily wounded among them. They're receiving medical help. I'd like to underline Ukraine needs Ukrainian heroes alive. It's our principle. I think every adequate person understands it. Our military and intelligence have started the operation to save Mariupol's defenders. The work continues to bring the guys home, and it requires delicacy and time.
यूक्रेन की रक्षा मंत्री हाना मल्यार का कहना है कि प्लांट के अंदर बचे हुए योद्धाओं को बचाने के लिए मिशन चल रहे हैं, जो कि बर्बाद हो चुके दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियोपोल में प्रतिरोध का अंतिम गढ़ है। उधर भारत ने पिछले 24 घंटों में 2202 नए कोविड मामले दर्ज किए और कोविड 19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो वो 17,317 है और कोविड 19 से कुल मौतों का आंकड़ा 5,24,241 तक पहुंच गया है और देश में पॉजिटिविटी दर 0.60% है। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 70 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54 रुपये और 34 पैसे है। खेल समाचार में सोमवार को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स पर दिल्ली कैपिटल ने 17 रन से जीत दर्ज की है। आईपीएल के 64वें मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 160 रन का लक्ष्य दिया लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के आगे पंजाब किंग्स निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बरसात के साथ तूफान की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम 21 डिग्री तक जाएगा। एडलेड बारिश में की संभावना के साथ न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 18 तक रहेगा। मेलबर्न में एक या दो बौछार की संभावना रहेगी और यहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक जाएगा। कैनबरा में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 3 और अधिकतम तापमान होगा 13 डिग्री। सिडनी में धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक जाएगा। ब्रिस्बेन में बारिश की संभावना के साथ वहां का न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री। डार्विन में धूप के साथ वहां का न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 34 डिग्री तक जाएगा और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 42 डिग्री। इसके साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।